हमने बुलवाया, बुलवा करके कहा जो तुमको हमने कहा जो तुम्हारी मैया मर रही है, एक बार जाकर के उससे भेंट कराओ, जब अंतिम अभिलाषा है तो जाकर के पूर्ण कर देनी चाहिए। इन्होंने कहा जो प्रभुपाद जी, बड़े सौभाग्य से मैं किसी प्रकार से इस जन्म से आपके पास में आया और आज मैं मैया के पास में जाता हूँ, तो मैया कहेगी जी बेटा एक बेटा तुम्हारा ऐसे ही चला गया और दूसरा बेटा भी वो अब मठ में जाने की तैयारी कर रहा है और जो दूसरे हैं दो वो कुछ नहीं समझते, तुम ही ये सारी गृहस्थी को संभाल सकता है, तुम्हारे घर जाने से घर बर्बाद हो जाएगा, हमारी अंतिम यही इच्छा है कि तुम घर में रह करके रहो। उस समय मैं क्या करूँगा, तो उस समय अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए तो हमको वहाँ घर में रहना पड़ेगा और हमारा कोटि कोटि जन्म हमारा बेकार चला जाएगा, ऐसा सोच करके मैं नहीं गया। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया। देखो कैसी विषम स्थिति में भी वो नहीं गए, हम लोग होते तो कहते जो चलो घर में घूमाए, ऐसा नहीं। एक समय में वो बतलाया, एक आदमी वैश्य को प्रभुपाद जी ने वहाँ के लिए मठ कमांडर बनाया जोगपीठ के लिए, उसके ऊपर में सब भार दिया ब्रह्मचारी को, वो फूल करके कुम जरा मोटा हो गया, मैं इस समय सबसे प्रधान आदमी हूँ, इसका हमको इंचार्ज इन्होंने बनाया है, अब वो बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को गुरु भाइयों को दूसरों को तुच्छ समझने लगा, दुर्व्यवहार करने लगा। एक दिन वो यहाँ तक कि गुरु वैष्णव को भी नहीं माने, उदंड हो गया, यहाँ तक कि प्रभुपाद के प्रति भी श्रद्धा उसकी कमी, मैं बहुत बड़ा कुछ हो गया, सब लोग आते उसको पैसा देते ठाकुर जी की सेवा के लिए, कोई कपड़ा देता कोई कुछ करने लगता और उसका सम्मान बढ़ गया। प्रभुपाद जी ने के पास में गया दो चार बार उसके विरुद्ध में, उन्होंने विनोद मैंने हमारे गुरु जी को बुला करके कहा इसको आज ही मत से बाहर करो, उसका सारा सामान गाड़ी में रख करके यहाँ से विदा कर दो, नहीं तो ये भ्रष्ट कर देगा हमारे समस्त ये मठ को ही। तो गुरु जी चले गए, शाम को उन्होंने खबर लिया जैसे विनोद इसने काम को किया कि नहीं, तो पता लगा जी नहीं, तो उन्होंने दूसरे एक ब्रह्मचारी को बुलाया और कहा जैसे उसका सामान लेकर के गाड़ी पर चढ़ा करके उसको गंगा पार उसको कर दो। वो ब्रह्मचारी आया और उसका सब सामान ले करके और उसको पकड़ करके खींच करके घर से बाहर ले आ करके मठ से बाहर कर दिया चला। प्रभुपाद ने बुलाया उनको, विनोद तुमको मैंने कहा जैसे तू उसको बाहर कर दो, तो तुमने बाहर क्यों नहीं किया? कुछ देर के बाद पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर बड़े नम्र होकर के बोले जे प्रभु आप लोगों का चरित्र, भगवान का चरित्र और वैष्णवों का चरित्र देवता भी नहीं समझ पाते हैं, आप जगत के समस्त जीवों को प्राणियों को लेकर के यहाँ पर भजन करा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जानता कि आप चाहेंगे ये इसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, यहाँ पर रहेगा तो कुछ कंट्रोल भी हो सकता है और यदि यहाँ से बाहर कर दिया तो एकदम उसका सत्ता नाश हो जाएगा। आज अब ऐसा करें कल प्रसन्न होकर के कहेंगे मुझी को अरे उसको तूने बाहर कर दिया, हम मैंने भीतर से कहा था थोड़े तो उसको जाओ बुला लाओ। चुपचाप कुछ नहीं बोल, जैसे उत्तम गुरु का भी विचार समझना बड़ा भारी कठिन है, सत शिष्यों का विचार भी वैसे ही बड़ा उन्नत होता है, जब तक कि ऐसा शिष्य नहीं हुआ जाए और पूर्ण रूप में समर्पण न हो तब तो गुरु के विचारों को कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए जैसे महाप्रभु जी के परिकर साथ में आए और सब थोड़े दिन में ही प्रचार किया, ऐसे वो भारती महाराज जी बतला रहे थे, जो वैसे ही जगत गुरु नित्य लीला प्रशिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब जगत में आए अपने वो सब सिद्ध परिकरों को लेकर के, साधारण लोग नहीं थे, बच्चे बच्चे जैसे केवट सांप होता है ऐसे वो थे, बड़े तेजस्वी सभी जने जने शक्ति धरे ब्रह्मांडकारी, ऐसे ये प्रभुपाद के सब शिष्य आत्मसमर्पण करने के साथ ही साथ अपने आप ये शक्ति आती है, ये का शक्ति कहाँ से आती है, वो लादिनी शक्ति गुरु के माध्यम से वैष्णव के माध्यम से भगवान के कृपा के माध्यम से उसमें आ जाए, अत्यंत मूर्ख जाहिल आदमी भी ऐसा बन जाता है। इसलिए पूर्ण समर्पण करके सेवा करने के लिए गुरु सेवा, गुरु सेवा मैंने क्या, कृष्ण की का मनोभीष्ट पूर्ण करना, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी का अभीष्ट पूर्ण करना ही गुरु जी की सेवा है। केवल आंगिक या बाहरी सेवा को, ये सब बाहरी सेवाएं भी होती हैं वो भी ठीक है, किंतु मूल उनका उद्देश्य क्या है, जिसलिए वो लोग आते हैं वो लोग गए किस लिए आते हैं, चैतन्य महाप्रभु मनोभीष्टम भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति, ऐसे गुरु जी की महिमा है। जितने दिन बोलेंगे और अच्छी अच्छी सब चीजें आएंगी। बोलो करके वैष्णव बनाया अपना आत्म को, पूजा में अधिकार नहीं था, था शास्त्रों में, किंतु समाज ने कह दिया जैसे ये स्त्री रसोई बना सकती है, ठाकुर जी की पूजा नहीं, शालग्राम की पूजा नहीं कर सकती है, ये सब कड़े कड़े बंधन थे।
तो ये सब
यदि दीक्षित हो, एक शूद्र कुल का व्यक्ति भी मंत्र से दीक्षित होने पर वो सब ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। स्मार्ट लोग ऐसा नहीं करते, ब्राह्मण शिष्य होने पर भी उसका छुआ हुआ रसोई नहीं खाएंगे, अपनी स्त्री का बनाया हुआ कच्चा रसोई नहीं खाते थे,
सबसे पका ही खाते थे वो लोग,
हाँ अपने हाथ से बना करके खाते थे, स्वपाक स्वपाक ही सुने छ, हाँ
अर्थात हम लोग यहाँ सुने पत्रिका के माध्यम।
गुरु जी का व्यक्तित्व बड़ा ही गंभीर था, वो बहुत कम बातचीत करते थे, जैसा भी ये बतलाया चुचुड़ा मठ में एक समय चुचुड़ा के बहुत से लोग आए और गुरु जी से बातचीत कर रहे थे और गुरु महाराज जी ऐसे लेटे हुए पैर पर पैर रख करके, और वो सब लोग एक घंटा हो गया अपनी बात कर रहे हैं और ये कुछ नहीं कर। नरसिंह महाराज जी थोड़ी देर के बाद में आए, वो देख रहे थे और हृदय में घुमड़ रहे थे, ये देखो तो इतने देर से बैठे हुए हैं इनको कोई बात नहीं कहते। तो जब वो लोग चले गए तो गुरु महाराज जी कहा एक घंटा तक वहाँ पर बैठे रहे और वो लोग अपनी अपनी बात कर, आपने कुछ भी इनसे बातचीत क्यों नहीं किया, अच्छा तो आप ही आकर के क्यों नहीं बात किया, तो ये क्यों आपसे बात कर रहे थे, तो यदि मैं हाँ कहूँ तो उनकी सारी बात हमको मान लेनी पड़ी और वो सब ग्रामीण जैसे तैसे बातें, और यदि खंडन करूँ तो वो कुछ समझेंगे नहीं, और हम भगवत चिंता में थे, हम उनकी बातों को मैंने सुन करके कुछ भी नहीं सुना ना कुछ भी जाना, हाँ कहेंगे तब भी दोष और न सुन कुछ खंडन करें तब भी दोष, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा उससे। गुरु महाराज जी का व्यक्तित्व तो गंभीर था, हम मथुरा मठ में बैठे थे, क्या बैठे थे लोग कहते थे बड़े गंभीर हैं और बहुत कम बोलते हैं और विशेष करके रस के विषय में कुछ भी नहीं, वो वेदांती आदमी है, ज्ञानी है, बड़े तत्व ज्ञानी है और रस से संबंध नहीं, ऐसे कुछ लोगों की धारणा। तो मैं गोपाल चंपू पढ़ रहा था और गोपाल गुरु महाराज जी अपने घर में से पढ़ करके हमको बड़ा आनंद आया, हमारे आंखों से आंसू निकलने लगा, जी गोस्वामी का गोपाल चंपू दामोदर लीला, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं गुरु जी के घर में जा करके और गुरु जी से मैंने कहा, ये लोग कहते हैं कि जीव गोस्वामी तो बड़े
दार्शनिक
का पालन करने वाले और बड़े गंभीर थे, वेदांत दर्शन का सारा विचार अपने षट संदर्भ में लिखा है, उसमें प्रवेश करना बड़ा भारी कठिन है, किंतु हमको तो ऐसा मालूम नहीं हुआ, ये जीव गोस्वामी कैसे रसिक थे उतना तो मैं नहीं कर सकता, किंतु मैं थोड़ा सा ये पढ़ रहा था गोपाल चंपू में दामोदर लीला का, उसमें कृष्ण दोनों पेड़ों के बीच में पहुंच गए हैं, ओखल उधर है और दोनों पेड़ ऐसे गिर गए, सीधा नहीं गिरे कृष्ण के, और उस समय में जो जहां था दौड़ करके आया, कोई आंधी नहीं तूफान नहीं कुछ नहीं, और वृक्ष ये गिर कैसे गए, यदि बच्चे ये सब सारे मर जाते तो क्या होता, जो सदा भी दौड़ करके आई घर से, नंद बाबा ब्रह्मांड घाट में स्नान कर रहे थे आए, तो बाद में कृष्ण ने देखा अपने बाबा को डकर डकर करते, अब तक नहीं रो रहे थे, जब बंधे जा रहे थे तब तो रो रहे थे और आंसू काजल मिश्रित
गंगा जमुना
ये दोनों अभी सूख गया था, किंतु बाबा को देखते ही इतने जोर से रोने लगे, नंद बाबा आकर के झट उनको गोदी में रखे, किसने बांधा बोल नहीं, किसने बांधा?
मैया ने।
तुम्हारी मैया ने बांधा? और रो रहे हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से खोला और पॉकेट से एक लड्डू दिया। रोना तो कम हो गया किंतु यशोदा जी वहीं पर बहुत दूर में खड़ी है, काठ की पुतली की भांति। आज यदि मर गया हो, कल्पना कर लो, अब आँख के आंसू सूख गए, हृदय उनका सूख गया। ये कारण जब किसने तुम जब आना, बड़ी मुश्किल से बोले बोले, खोला किसने? अब जाएगा उसके पास कभी? अपने गोदी पर एक तरफ में ले लिया, बलदेव जी को बैठाया दाहिने में और कृष्ण को बैठा, और दोनों को लेकर के ब्रह्मांड में घाट में जा करके स्नान किया। करते करते अब एक दो बज गया, कुछ खाना नहीं, कलेव होता था, कैसे कैसे खाते थे, अभी बच्चे थे, अभी छोटे 3-2.5 वर्ष के। वहाँ से घर लाए, ड्योरी में बैठे और उन्होंने गाय, एक सुंदर गाय मंगाई और उसका धारोष्ण मिश्री दे दिया अपने पॉकेट से, और धारोष्ण दूध उनको खिलाया, धार पेट खिला दिया। इसके बाद में धीरे 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 शाम हो गई, अब तो घर में तहलका मच गया। यशोदा जी तो ऐसे ही बैठी हुई एकदम जल रही है, भीतर से मर रही, और सब लोग देख रहे हैं कि यशोदा मैया की ये दशा है, बच्चे ने नहीं खाया, बाप ने नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया। वो सब मिल करके उपानंद की पत्नी और रोहिणी मैया बलदेव को साथ में लेकर के गए। बलदेव जी के साथ जाओ पकड़ लाओ, तो बलदेव जी जरा मोटे गाटे थे और बड़े बलवान थे, तो कृष्ण को पकड़ा, ज्यों ही ऐसे पकड़ा, उन्होंने ऐसा धक्का दिया कि आज बलदेव जी गिर गए, नहीं ला सके। उपानंद की मैया कहती, पत्नी कहती हैं, बेटा मैया के पास नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा? बाबा के पास। खेलेगा किसके साथ? दाऊ भैया के साथ। रात में किसके साथ में सोएगा? बाबा के साथ में, दाऊ भैया के साथ। मैया के पास नहीं जाएगा, और यदि जय सियाराम तुम्हारी मैया मर जाए तो? इतने सुनते ही कृष्ण मैया मैया का कहकर रोने, हाथ ऐसा रोने लगे, तो रोहिणी जी ने उनको गोदी में ले, गोदी में लेने के साथ साथ में ये भी रोने लगे, नंद बाबा रोने लगे, जो उपस्थित जो जितने लोग थे सभी रोने, कृष्ण भी रो रहे हैं। और उधर यशोदा मैया के गोदी में जब कृष्ण को दिया, अब तक नहीं रो रही थी किंतु देते ही ऐसे अपने गोदी में ले लिया, स्तन दे दिया और रोने लगी। गगर मैं भी रोने लगा, और गुरु महाराज जी ये सुन करके ऐसे रोने लगे जो अपने को स्थिर नहीं कर। बहुत देर के बाद में सब सुन, ऊपर से ऐसे बड़े गंभीर दिखते थे, और कोई रसफस की बात करता तो बड़े बिगड़ जाते थे, कहे दशम स्कंद भागवत क्यों लोग पढ़ते हैं, एकादश स्कंद क्यों नहीं पढ़ते हैं, ऊपर से डांटते, किंतु भीतर से इतना कोमल उनका भाव और इतना रसस्त भाव, नहीं तो राधा चिंता निवेश न, ये श्लोक नहीं हो सकता था। आज बच्चे ने क्या नाम उसका,
श्याम
ने बहुत अच्छा वो बोल रहा था, बहुत अच्छा व्याख्या के साथ में भागवत की के श्लोकों को देख करके वो बोल, बहुत सुंदर। ऐसे ही महापुरुषों के लक्षण होते, ऊपर से सब मालूम होता है जो कब कठोर हैं, किंतु भीतर से कितने कोमल रसिक होते हैं, उनको साधारण लोगों के लिए समझ पाना बड़ा भारी कठिन। कहते थे जो मामला नहीं करना जानता वो राधा जी की सेवा नहीं कर सकता। जो मामला करने वाला, ये मामला कहाँ नहीं हुआ था, पहले आरंभ हुआ राधा जी के दरबार में, किसके विरुद्ध केस है?
श्याम
सुंदर कृष्ण के विरुद्ध में, और उनके वकील कौन है?
मधुमंगल। उनके
कृष्ण के वकील
मधुमंगल,
मधुमंगल उन्होंने पैरवी के लिए लगाया है, और मधुमंगल है तो कृष्ण है और सब, और राधा जी के तरफ से वकील कौन है? ललिता जी है, विशाखा जी हैं, ये सब उनके वकील, और दोनों में बातचीत हुई। कृष्ण हार गए मामला, हार कर हारने के बाद में ललिता जी ने कहा जैसे दस्तखत करो, जैसे मैं हार गया। दस्तखत माने क्या? दस्तखत, दस्तखत माने ये मैं आज से दास हो गया, ये दस्तखत लिख दो।
उसमें जज कौन था?
जो कौन था जो मैं हमको याद नहीं आ रहा, कुछ वो बतला रहे थे। दास खत लिखो जे मैं उनका दास हूँ। कृष्ण से ये दास खत जबरदस्ती लिखवाया गया और उनको लिख देना पड़ा। तो गुरु जी कहते थे ये किस लिए कहा? उनको वो कोर्ट में गए थे मामला वहाँ के लिए, मायापुर के लिए। वकीलों ने कहा जी आप साधु संन्यासी ब्रह्मचारी क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा जब तुम लोग क्यों आता है, तुम लोगों को आने की क्या जरूरत है? अरे कोर्ट कचहरी ये धर्म का स्थान है, न्याय का स्थान है, जहाँ पर न्याय होता है। न्याय क्या? जड़ और चेतन का न्याय और सब चीज़ें, असुरों का और भक्तों का, ये सब उसमें असुर लोग क्या आए होंगे। ये न्यायालय है, धर्म का स्थान, इसलिए मैं इसलिए आया हूँ। और तुम लोग भी यदि भगवान का भजन नहीं करेगा तो तुम्हारा सब बेकार का है। ये मामला देखो हम कहाँ से, ये कहाँ हुआ था, ये वृंदावन में मामला हुआ था, उसमें कृष्ण हार गए, राधा जी जीत गई, कृष्ण को दास खत ये लिखना पड़ा, ये सुलहनामा इस तरह से हुआ। इसलिए कहते थे जो मामला नहीं कर सकता वो राधा जी का भजन नहीं कर सकता। हम लोगों को उत्साहित करते थे, हम भी, हमको यहाँ पर जब मथुरा लिया गया मठ, तो हमको कम से कम तक 15-20 केस लड़ना पड़ा। तो हम रोज फाइल लेकर के वकील के यहाँ और कचहरी में, कभी वहाँ कभी वहाँ, दिन भर डोलता रहता, पत्रिका इत्यादि और मठ को देखना सुनना सब कुछ करना, उसमें सब ये सब मामला भी लड़ता था। हमको लज्जा नहीं आती जब मैं सन्यासी होकर के और केस ले जा रहा हूँ, गुरु की सेवा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये है गुरु सेवा। अब तो बंद होना चाहिए न, तुम बोलो दो मिनट।
ये नहीं बोले
He was seen so solid, so grave, and not have any rust tattva. But I saw, and I felt and realized that how rusty Vaishnava is.
How soft his heart is.
And at that time, I determined that he is very rusty, tattvajna. And I am so fortunate to have the lotus feet of Guru Dev. बस बहुत ये हो गया। और फिर कभी हम लोग करेंगे, अभी हम लोग मथुरा जाएंगे। अब कीर्तन के साथ में समाप्त करके हमारे जितने ब्रह्मचारी लोग हैं जो मथुरा से आए थे, वो लोग सब मथुरा में जाएंगे, एक महामंत्र के साथ में इसको समाप्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हाउ ही हैज सर्व्ड हिज गुरुदेव, हाउ ही सर्व्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, हाउ ही डिड द वर्क सर्व हिज नित्यानंद प्रभु इन हिज गाइडेंस, and how he served Radha Krishna Jugal Kishore as Radha Chinta Niveshini, how he served kaise unhone seva ki Tulsi ji ki, Vrinda ji ki, kaise Tulsi ji ki
arati
ke dwara kya gaud bane diyo bas dine rahi abhilas
माया
पूरे दियो बास, फिर उसके बाद में
वृंदा
बने दियो बास, यही अभिलाषी
अंगे ते माखी बसदा धाम झुली दासी।
ये सब चीजों को भावना लेकर के ऐसे ही सेवक बनना पड़ेगा, जैसे गुरु जी ने अपने गुरु जी की सेवा की, तब तो ये पुष्पांजलि होगी। जो जितना ही इस भाव से लेकर के गुरु की सेवा करेगा, उनकी अपने आप, इसलिए गुरु जी की सेवा करने से महाप्रभु जी की, नित्यानंद प्रभु जी की, गौरधाम की, कृष्ण धाम की, राधा कृष्ण जुगल की, ललिता विशाखा सबकी, वृंदा इत्यादि की, सभी की सेवा अपने आप उसी गुरु सेवा में हो जाती है। इसलिए गुरु के मनोभीष्ट को वैसे ही हम लोग पूरा करने का संकल्प करेंगे जैसे रूप गोस्वामी जी, श्री चैतन्य मनोभीष्टम भूतले स्वयं रूप तदा, ऐसे बनने की हम लोग चेष्टा करके प्रतिज्ञा करके चलेंगे। ऐसे ही अपने जीवन को, प्राण को, धन को, शरीर को, आत्मा को, समस्त इंद्रियों को गुरु की सेवा के लिए हम लगाएं। आजकल भक्ति होना बड़ा कठिन है, ऐसे शुद्ध भक्तों का मिलना भी बहुत कठिन है। हम लोग का सौभाग्य जी ऐसी गुरु परंपरा में आए, इसलिए सोच विचार कर खूब दृढ़ता के साथ में भक्ति है। कभी उसे फिसल न जाए इसके लिए देखना, बहुत से लोग फिसल जाते, कभी मत फिसलो। क्या चित्ते ते करिया क
गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया
हार ना करिया मने आशा, इसको याद रखो, गांठ मान लो, ये है गुरु सेवा। प्रभुपाद जी की सेवा के लिए जैसे गुरु जी अपने को गला भी देने के लिए तैयार है, और आजकल कोई गुरु की थोड़ी सी बात भी जो उनके कल्याण की कही जाती है सुनने में तत्पर नहीं है, बस गुरु को छोड़ करके चले जाए, ऐसा नहीं। इन चीज़ों को समझ बूझ करके और शुद्ध रूप में गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा में लगो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, जगत का भी कल्याण होगा। ये सुंदर पुष्पांजलि मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, और गुरु परंपरा से राधा कृष्ण और महाप्रभु जी से आप लोगों को ऐसी ही चित्त वृत्ति दें जो ऐसी सेवा में आप लोग निविष्ट होकर के विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकें। गौर प्रमाण जय देव।
मैं अपने इस शरीर का जितने प्रकार का अभिमान है उसको छोड़कर मैं कृष्ण का दास या दासी हूँ, वो भी बहुत तुच्छ हूँ, ऐसा समझ करके मैं गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वंदे गुरु श्री युत पद कमल श्री गुरुन वैष्णवाय, पहले गुरु जी की वंदना करके पुनः गुरुन अर्थात यहाँ पर बहुवचन हो गया, द्विवचन, दो गुरुओं की भी वंदना करता हूँ, एक शिक्षा दीक्षा गुरु और एक शिक्षक, दोनों क्वालिटी में एक ही है। यदि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक है तब तो कोई बात ही नहीं, जो हमारे भजन की शिक्षा देता है और जो मंत्र देता है, दोनों ही परम भागवत हैं, दोनों की चरणों की वंदना करता, केवल गुरु से ही नहीं होगा। और वैष्णव का यदि सम्मान नहीं देंगे तो केवल गुरु से नहीं होगा, वैष्णव जितने भक्त हैं कृष्ण के महाप्रभु जी के प्यारे हैं, इसलिए शिक्षा गुरु में कौन है, सबसे पहले रूप गोस्वामी, जिन्होंने इस जगत में प्रेममयी भक्ति का प्रचार किया, जिसको चैतन्य महापुरुष देना चाहते। प्रेम जीव मात्र का धर्म है, असल सनातन धर्म ये प्रेम है। भगवान से जिसको प्रेम नहीं है वो जगत के जीवों से हजार कहता है जी हम प्रेम करते हैं, नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता। जो कहता है जी मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, ठीक, किंतु मछली गोश्त ये सब क्यों खाता है, यदि प्राणी मात्र से ही प्रति उपृति, इसलिए ऐसे करने वाले हिंसा करने वाले व्यक्ति भगवान को मानने पर भी इन भक्तों को और जीव जंतुओं को भगवान का ये नहीं मानते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जिन्होंने इस जगत में प्रेम की धारा बहाई उनके चरण, उनके जो अग्रज माने बड़े भैया, और रूप गोस्वामी के जो गुरु हैं सनातन गोस्वामी जी, जिसको चैतन्य महाप्रभु बड़ा आदर और श्रद्धा करते थे, उनके चरणों गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जिनका चरित्र महान है भक्ति में, जो हम लोगों के लिए लाइट पोस्ट है, ध्रुव तारा, जिनका जीवन चरित्र देखकर हम भक्ति की तरफ में अग्रसर होते हैं, उनके चरणों में हम वंदना करते। त्याग वैराग्य और भक्ति के वो मूर्ति थे। चैतन्य महाप्रभु के दो परिकर विशेष करके नित्यानंद प्रभु जो बलदेव जी और अद्वैताचार्य महाविष्णु, ये विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि के कारण हैं, जिनकी इच्छा से ही एक आँख के देखने से प्रकृति क्रियामान होकर के विश्व का सृजन करती है, उनके चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, वंदना उनकी चरणों को करते हैं। फिर राधा और कृष्ण यही हमारे अंतिम आराध्य देव हैं। सहगण
ललिता विशाखा, ललिता विशाखा चित्रा इत्यादि जितनी सखियां हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, विश्वभानु और कृतिका, श्रीदाम, सुदाम, सुदाम, वसुदाम इत्यादि, मधुमंगल इत्यादि, कृष्ण के जितने भी परिकर हैं उन सब को लेकर के राधा कृष्ण जी का चरणों में वंदना कर चैतन्य चैतामृत में उनकी वंदना करें। इसलिए हम लोग पहले इस श्लोक में वंदना करने से गुरु, वैष्णव, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, राधा जी, कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर गदाधर पंडित इत्यादि सभी की एक साथ में वंदना हो जाती है। याद ना हो तो देख करके भी हमारी गौड़ीय गीति गुच्छ में लिखा है, इसको कर लेना चाहिए, अपनी परंपरा को जानना चाहिए। इस श्रृंखला करके हम लोग फिर कीर्तन धारण करें। हमारा अंतिम जीवन का गोल क्या है, एक ना गुरु यही ठीक कर देता है। हम क्या चीज चाहते हैं? हम चाहते हैं राधा कृष्ण का प्रेम, उनके चरण, यही इसी को चैतन्य महाप्रभु देने आए। अभी हम लोग जगत में हैं, जगत में 99% लोग नास्तिक से हैं, खाने पीने मौज करने में ई ड्रिंक एंड बी मेरी में लगे, उनके अपने स्वरूप का तनिक आभास भी नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, खाते पीते लोग, क्या खाना चाहिए भी ज्ञान नहीं है उनको, अंट संट क्या चीज खाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट उनकी रहती है। बल्कि वैष्णव को, संतों को देख करके उपहास करेंगे वो, उनको अच्छा नहीं लगता ये सब, उनको भी भक्ति में कैसे लाया जाए, भगवान के तरफ में कैसे लाया जाए। संत लोग इसके लिए बड़े विचार करके और बड़े दयालुता के साथ में उन पर कृपा करते हैं। शास्त्रों ने इसके लिए कुछ विधियां बनाई, जो सवेरे हम लोगों का विचार चल रहा है, कोई अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, अतिथियों को आदर, अतिथियों का आदर करने का ये बतलाया गया है। किसी तरह से यदि संत किसी प्रकार से आ गए बिना बुलाए घर में और उनका आदर यदि कर दिया, उनको खिला पिला करके संतुष्ट कर दिया है, सच्चे में संत हो, वो तो लाखों में एक ही मिले, किंतु बाई चांस यदि आ गए तो हमारा परमार्थ का दरवाजा खुल गया, ये समझो। इसलिए ये विधियां संसार में बनाई गई है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म पहले बना था परमार्थ को लक्ष्य करके। आज उन सबको फेंक रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, इसको हटा फटा करके एकदम सभी एक, खाओ पियो मान तान जो इच्छा हो, मत पियो शराब पियो जो इच्छा करो तुम, यहाँ तक कि नाइट क्लब क्या क्या हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, विदेशों में ऐसा है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा है। इसलिए ये विधियाँ बनाई गई कि हमारे बच्चे क्रमशः हमारा पथ अनुगमन करके इस पथ से चलेंगे, तो किस कभी यदि साधु का संग, बिना साधु के संग से उपदेश से हमारा पथ नहीं खुल सकता, तो वो कैसे, इसी तरह से ऐसे वर्णाश्रम की विधियाँ बन गई। उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम, किंतु ये सब सबके लिए संभव पर नहीं है, सबके लिए नहीं संभव, ये तो विशेष करके जिस पर कृपा हो, और बाकी लोग क्या करेंगे, इसीलिए उनको लिए विधि बनाई गई। कचहरी, कानून, लॉ, ये सब किसके लिए बनाया गया? सज्जन जो है उनके लिए नहीं बनाया गया, दुर्जनों को इसमें ये न करें, करेंगे तो दंड दिया जाए, इसलिए कहा सच बोल, जो सच बोलता है उसके लिए क्या जरूरत, जो चोरी नहीं करता, बदमाशी नहीं करता, उनके लिए लॉ क्या क्या चीज है? अब हम लोगों के लिए लॉ की क्या जरूरत है? किंतु जिनको अपने पर कंट्रोल नहीं है, दिन रात भगवान को भूल करके उधर में जाए, उन लोगों के लिए ये सब विधियाँ बनाई, हमारे शास्त्र में बनाई है। उन समस्त शास्त्रों में भागवत सबसे श्रेष्ठ है, जितने प्रकार वो डायरेक्ट कृष्ण को प्रेम देने वाला है, और गीता घुमा फिरा करके वहाँ पर रास्ता प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो इसलिए हमको गीता से आरंभ करना है जीवन को, क्या करना है, ऐसा करो जीवन में सुख और दुख, जय और पराजय, हानि और लाभ, जन्म और मरण है,
जरूर निश्चित रूप में है, ऐसा कोई नहीं है जिस पर यह लागू नहीं होता। यदि इसी में तुम रह गया, जय हो रहा है तो खूब आनंद, रुपये पैसे आ रहे हैं तो खूब आनंद, और गरीबी आ गई तो मन खराब हो गया, कहते अब विष खा करके मरते हैं, कोई थोड़ा सा भी दुख आया। बड़े बड़े लीडरों को देखो, उनके जीवन में कैसे कैसे क्या क्या, थोड़े समय दुख में काहिल हो जाते हैं और बस आत्महत्या कर लेते हैं, विष खा लेते हैं, रेल के नीचे कट जाते हैं, अपने से अपने को शूट कर देते हैं। हिटलर जैसे व्यक्ति को भी ऐसा ही करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि जय पराजय दोनों को भाई समझो एक साथ, पराजय हो या जय हो कोई बात नहीं, इसमें हमारा भक्ति को कोई नहीं बिगाड़ सकता। हानि हो लाभ हो, भगवान के तरफ में चलने के लिए गरीबी अच्छी है ना धनी धनवान होना अच्छा है, कौन सा है? कोई अच्छा नहीं है बेटा। जहाँ साधुओं का संग मिलकर के उधर गया तो वो गरीबी में भी वो उसे पालेगा और बड़े आनंद के साथ में दिनों को काट लेगा, और धनवान व्यक्ति भी यदि साधु संग मिल गया अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगा करके अपने को सेवक बनाकर और जीवन को बड़े सुख और शांति के साथ में पाकर। इसलिए गीता में हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि है, इसके लिए अधिक चिंता मत करो। गीता के दूसरे अध्याय में यही बतलाया गया,
सुख
हानि लाभ सुख दुख
समय कृत्व लाभ लाभ जय
लाभा लाभा जय जय तस्मात
ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम अवाप्यसि।
तो सुख दुख को बराबर समझे, आज महाराजा थे और कल महाराणा प्रताप की भांति घर छोड़ना पड़ा, और छोड़ने के बाद में कहीं खाने का रहने का ठिकाना नहीं, उनका पास का जितना पैसा था सब खत्म हो गया, जंगल में गए, उस समय घास की रोटी बना रहे थे नमक देकर, और सभी भूखे हैं दो तीन दिनों से, और जब ही रोटी बन करके तैयार, एक उद बिलाव आया और रोटी लेकर के चला गया, खा नहीं पाए, कैसा उनको दुख। किंतु उनके सामने एक तरह मातृभूमि की सेवा के लिए प्राण भी विसर्जन, और हम लोगों के यहाँ क्या है, कृष्ण की सेवा के लिए तो प्राण विसर्जन कर, इसलिए उद्देश्य ठीक होना चाहिए। गरीबी हानि लाभ जस अपजस ये सब हाथ का मैल है, इसमें सुख शांति नहीं है, दुख भी नहीं है सुख भी नहीं है, सुख मन की वृत्ति के ऊपर में निर्भर है सब कुछ इसके ऊपर। इसलिए मन को ऐसा बनाया जाए समस्त अवस्थाओं में, यदि ऐसे नहीं है तभी सुख से भगवान का भजन, कोई बाधा है यदि परेशान है। बंगाल की बहुत सी महिलाएं हैं बड़ी गरीब, वृंदावन में आना चाहती है, पैसा नहीं है, जैसे तैसे गाड़ी में बैठ गई, कोई कह दिया तो उतार दिया, तो उतर गई, फिर बैठ गई, गाली दे लिया, उसको भी वृंदावन में आ जाती, और मध्यम श्रेणी के लोग नहीं आ पाते, नहीं आ पाते, और धनी भी हैं उनको कितने झंझटे हैं, और सब आ करके जा करके दर्शन कर। हमने बंगाल के बहुत से लोग हैं, एक पैसा नहीं, एक तिलक लगा लिया और गाड़ी में बैठ गए, हमारे बाप की गाड़ी है, बस उनको कोई कहता भी नहीं। इसलिए गरीबी उसमें बाधक नहीं है, मन के शांत और अशांत होने में ये गरीबी बल्कि धनी अधिक हो जाने से बाधा है। मैं कैसे वहां पर जाऊं, वहां पर कीर्तन हो रहा था, इच्छा है भीतर से किंतु मेरा तो अपमान होगा, इसलिए इन सब चीजों को सह लेना, गरीबी हो धनीपन हो, हानि कभी हुआ कभी लाभ हुआ, ऐसा कोई है जिस जीवन में ये तरंगे नहीं आती हैं, सभी प्रकार के काम, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है यदि बैलेंस ठीक ना रहा ना तो लोग पागल करार कर देंगे और पागल हो जाएंगे, हमको पागल बनना पड़ा है अच्छी स्थिति में भी, सब कुछ अपहरण कर लेंगे, पति मर गए बेटे हैं, देखा जैसे ये किसको अधिक दे देगी किसको क्या करेगी, जैसे तैसे पागल करा करके घर में बंद करके वैसे ही उसको रोगी करके पागल बना दिया और सर्वस्व ले लिया, वो बेचारी अंत में पागल ही होकर ऐसी स्थिति नहीं है, चला गया कोई बात नहीं, भगवान का भजन करें।
मेरा भाई को देखो तो अपने आप छोड़ दिया, उनके लिए क्या है इससे, हमारा भी तो पेट भर रहा है, हमने तो भी घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब जहाँ जाते हैं कितना लोग आदर करते हैं, इसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे सुख हो हानि हो लाभ हो जीवन हो मर सब समय तैयार होना चाहिए, भगवान का भजन ना छूटे ये चीज ठीक रहनी चाहिए, ये संकल्प ठीक हो जाएगा बाकी सब ठीक हो। भगवान का भजन करना खूब कठिन नहीं है, खूब कठिन, किंतु जिनका हृदय कपटता से भरा हुआ है, जिनमें अर्थ की पिपाशा है प्रतिष्ठा की आशा है, उनके लिए बड़ भारी कठिन है। और सरल एक मूर्ख जो कुछ नहीं जानता उसके लिए भी बहुत सहज है, भजन का उद्देश्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है सत्संग मिलना, यदि ये मिल गया सत्संग सब कुछ वो समझ सकेगा, ये जगत क्या है स्वप्न की भांति है, आज ये सब कुछ देख रहे हैं और इसी में रोग बिलबिला रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं, किंतु जब आँख खुल जाएगी तो देखेंगे अरे ये तो नरक है। भक्त लोग क्या देखते हैं, तत्ते अनुकंपा सुसुमित क्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाक हृदवाग बभी विदधन नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदेश। भगवत भक्त लोग जिस अवस्था में है, स्थाने स्थिता तनुवांग जिस अवस्था में है, धनी है गरीब है दुखी है अमीर है, जिस अवस्था में है इसके लिए चिंता नहीं करते, जो उस अवस्था में है गृहस्थ में है त्यागी में है जैसे हैं बालक हैं वृद्ध हैं जो अवस्था है उसी स्थान में करके क्या करते हैं, तत्तेनुकंपम, यदि कोई कष्ट आ गया समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के ये संस्कार से ही आए हैं, इसको तो भोगना ही पड़ेगा, हंसते हुए इसको भोग लें, और यदि सुख आया तो भी भोग लें, उसमें लपटाए नहीं, या ये समझे कि ये भगवान की बहुत कृपा है, मैं नहीं छोड़ना चाहता था किंतु भगवान ने छुड़ा दिया और बहुत अच्छा किया। मैं सोचता था पहले जो भाई रघुनाथ दास तो इतना वैराग्य करते थे, रूप गोस्वामी कैसा वैराग्य करते थे, हमारे गौर किशोर दास बाबाजी महाराज कैसे भी वैराग्य करते, हम लोग चाहने पर भी वैसा वैराग्य नहीं कर पाते, अच्छी अच्छी मिठाई खाने के लिए लड्डू पूरी कचौड़ी ये सब कितने अच्छे अच्छे अचार खाना खो नींबू का अचार या और कोई चीज तरह तरह की रहती थी। ठाकुर जी ने कहा तुम बैराग्य चाहता है किंतु तुम करता तो है नहीं, अच्छा तो मैं कर दूं, इसलिए कहता नहीं है, एक ऐसा रोग दे दिया डॉक्टर ने हमारे लिए कह दिया घी मत खाना और तली हुई कोई चीज मत खाना
अचार मत,
और अचार हमारा खूब प्रिय था, ठाकुर ने कहा जैसे डॉक्टर ने कहा दिया अचार मत खाएंगे इसमें पेट में गड़बड़ी हो जाती, जितना हमको बड़ा करना था वो सब उन्होंने डॉक्टरों के माध्यम से इधर से शरीर के ऐसा कर दिया जो अपने आप सहज हो गया। तो इसको भगवान की कृपा मानना चाहिए, कोई भी कष्ट भी हो अरे अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक क्या कष्ट हो सकता है, मन का ही कष्ट है। एक आदमी 1,000-2,000 का वो किसी होटल में जा करके बुकिंग करके एक प्लेट लाते हैं खाते, और एक सुअर टट्टी खाती है, दोनों के तृप्ति में क्या अंतर है, एक गरीब आदमी एक बिहार वाले होते हैं ना इधर में देखेंगे वो कपड़े में ही या किसी थाले में नमक दे करके सातु मिला दिया पानी डाल दिया और ले करके घोल करके पी गए और खा बस हो गया सारा दिन भर, उसमें उनको कितनी तृप्ति होती है। मैं जानता हूँ गांव में ऐसा होता था, खा करके इतनी तृप्ति जो षडरस भोजन में नहीं, तब तृप्ति तो अपने मन की बात है, और तरह तरह की चिंताएं जैसे कि हिंदू जाजी का लड़का मर गया सुने होंगे ना, ऑस्ट्रेलियन लड़की से प्यार करते थे उसने शादी नहीं किया तो उसने क्या करके सुसाइड कर लिया,
पेट्रोल छिड़क कर जला,
पेट्रोल छिड़क करके पतला होता, सब मन की खुमारियां हैं, इनसे अतीत होकर के वैष्णव लोग इन खुजलाहटों से दूर रह करके जो असल कर्तव्य हमारा इस जगत में है और चीज के पीछे नहीं अधिक दौड़ना है, वो तो आपको मिल जाएगी अपने आप अपने पूर्व जन्म के कर्म से, कैसे अच्छे अच्छे घर में जन्म हो गया, इस जन्म का कोई कर्म से हुआ, कोई किसी का बड़ा सुंदर रूप हो गया इस जन्म के कर्म से हुआ, इसलिए सबको ये अपने स्थान पर रहे रहे हमारा मूल उद्देश्य, हमको किसी प्रकार से भाई किसी तरह से चतुराई से बुद्धिमानी से जैसे भी हो कृष्ण का भजन करके इस जगत से, इसके लिए हम आए हैं, कुछ बटोरने के लिए नहीं आए, उसे सुख नहीं होगा ने? उसे और दुख ही हम बोल लेंगे। यदि मान लिया कि बच्चे होने से किसी को सुख होता है और भगवान ने उस एक व्यक्ति को ही 14 संतान दे दी, 13 लड़की और एक लड़का, क्या होगा? यदि इसी में सुख होता तो हो सुख, इसमें सुख नहीं, और हमारे ऊपर में निर्भर भी नहीं करता। इसलिए संसारिक जो दुख सुख ये सब, जैसे इनके स्वामी मर गए, किसी के हाथ की बात थी? क्या कर लिया इन्होंने या लड़कों ने भी क्या कर लिया? धन के द्वारा रक्षा कर सके, इसलिए बेंत की तरह हो, इनको बतला रहा था बेंत की तरह, खूब जोर से आंधी आई और वर्षा आई, बड़े बड़े मोटे मोटे पहाड़ वृक्षों को उखाड़ करके फेंक दिया। बेंत को उखाड़ सकता है वो हवा? वो जिधर से हवा चलेगी उधर ही सो जाएगा, फिर हवा चलेगी फिर आ गया, फिर हवा आएगी सो जाएगी, इधर आई तो फिर इधर आ गया, जिधर से आती है उधर ही में झुक जाता है, वो कभी उखड़ नहीं सकता है। तो वैष्णव लोग ऐसे होंगे, नम्र स्वभाव के, कोमल स्वभाव के, भगवान ने जो कुछ उनको दे दिया उसी में संतुष्ट होकर के भगवान का भजन करके आत्मा को जान करके मृत्यु काल के लिए भगवान के चरण में आ रहा है, समझ में? यदि यह काम नहीं पूरा हुआ, इंटरव्यू होगा, पूछेंगे तुम्हारा हिस्ट्री शीट हमारे हाथ में है, तुमने क्या किया था? उसमें उत्तर नहीं रहेगा, एक जम के यहाँ फेंक देंगे। अभी तो कहते जमटम कुछ नहीं है, जोश है ना, इसी जन्म में ही जो जम का जो जमपुरी का भोग करा देते हैं वो तो जरूर सकते हैं। इसलिए इस चीज को अपना खाता है वो ठीक है, हिस्ट्री शीट होता है ना पुलिस इत्यादि डिपार्टमेंट में, ये गड़बड़ ना हो, किसी भी अवस्था में रहो जैसे भी रहो भगवान के प्रति निष्ठा हो। भजन के भजन कुछ कम माला हो जाती है इसमें कोई बात नहीं है, भगवान के लिए ममता होनी चाहिए, और सबसे अधिक ममता जो मैं बतलाता हूँ आप लोगों को विशेष करके राधा जी के चरण में हो। ऐसा कोई नहीं खोल करके कहेगा, जगत में कोई नहीं बतलाएगा, यही प्रेम की अंतिम परिधि है, इसी जन्म में ठीक कर लेना है। धनी घर में खाने का सुख होने पर भी जरा संभल करके भोजन किया जाए, थोल शरीर इत्यादि न हो जाए, मुख खराब न रहे, भूख बनी रहे, सब चीजों पर माने वैष्णव लोग युक्त हार विहारस्य युक्त कष्ट सुकर्मसु
युक्त स्वप्न वदस्य।
ऐसे लोगों का योग सिद्ध होता है, जितना जरूरत है उसे कम ही संभाल करके, सभी विषय में युक्त आहार युक्त विहार युक्त में सोना है जो उचित है शरीर के लिए, ऐसे ही जितने लोगों से मिलने के जितबस उतना ही, विषयी लोगों से अधिक न मिला जाए, अपने संग वालों से मिला। मैं जब यहाँ देखता हूँ जैसे ये तो हमारे बेटे बेटियाँ सभी हूँ, तो एकदम अपने खास परिवार में आ गए। अब दिल्ली का बहुत सा जगह ऐसा बन गया है जो मालूम होता है जी हमारा अपना एकदम खास परिवार है, घर वालों को देख करके उतना आनंद नहीं होता है किंतु आप लोगों को देख करके ऐसा जी हमारा ऐसा ही है। अपने को देखेंगे जब भगवत भजन करने वाला व्यक्ति उसको अपना मानेंगे, कोई ईर्ष्या द्वेष इत्यादि न रहे, ईर्ष्या को तो उखाड़ करके फेंक देनी चाहिए, द्वेष को लोभ भी न हो, जैसा जीवन में आ रहा है वैसा करते हुए भगवान। अब थोड़ा सा गुरु जी का वो बोलो पर निर्भर थी विशेष करके ब्रज के ये भाव जगत में कहीं नहीं है। ब्रजवासियों का स्वभावतः कृष्ण के प्रति अनुराग कुछ है जो दूसरे वालों लोगों के लिए बहुत दूर दूर वालों ये संभव पाते हैं। हमारे भारतवर्ष में जहाँ भी दक्षिण से लेकर के इधर में सब जगह, गुजरात कहिए, बॉम्बे कहिए, बिहार कहिए, जितनी होली के पद हैं सब कृष्ण और राधा जी पर, सब ऐसा कोई भी पद नहीं, ये संस्कृति उसी के ऊपर में टिकी थी। अब संस्कृति का विनाश हो रहा है। और लठ मारी होली और कीचड़ में पत्थर मार करके और जितने गंदे चीजें वो काली माली इधर का लगा करके मुख में लपेट जाना, कपड़े नष्ट कर देना, बैर शत्रुता करना, ऐसा नहीं था। ये अब कुछ दिन समय देखता हूँ कि 30-40 वर्ष के अंदर में, 50 वर्ष के अंदर में लठ
मार का ब्रिज से कोई संबंध नहीं,
भूल सब लठ मार से होली से क्या संबंध है, ये अब सब ये हुआ, इसे विकृत रूप हो गया। लाठी से मारे किसी का हाथ टूट जाए, किसी का कुछ, लाठ से होती है ना, प्रेम से होली होती है, पिचकारी लिया
से कोई मारते
प्रेम की होली होती, उसका स्वरूप होता है। किंतु यही प्रेम होना चाहिए, ये स्वाभाविक अनुराग कृष्ण के प्रति जिनका होता है, अनेक विधि मार्ग से चल करके चले। इसलिए हमारे शास्त्र का आगमन ऐसा कहा, जिसको ये नहीं है विधि से चले,
ये हमारा विधि मार्ग से तो इंतजार है, चलना तो राग में ही है, वहाँ तो खड़ा है पर इंतजार है,
वहाँ पर एकदम सीधा चल रहा है। हमारे अंदर में राग है अनुराग, ये कुछ विकृत होकर के ये शरीर के प्रति परस्पर मिले, नहीं तो अनुराग सीधा एकदम कृष्ण के चरण में, राधा जी के चरण में, आप लोग भी इस पर सीधा चले, यही जीवन का हमारा लक्ष्य। चैतन्य महाप्रभु को हो, भागवत को हो, ये सब इसी को देने आए। दो परंपराएं हमारे यहाँ हैं, एक पंचरात्रिक परंपरा और एक है भागवत परंपरा। पंचरात्रिक परिक्रमा परंपरा क्या है, कुल गुरु से इधर से उधर से जैसे हो गुरु करके भगवान के मंत्र में दीक्षित होंगे, उसके लिए अर्चनित नहीं करना। प्रीति नहीं है तभी, अच्छा भाई प्रीति नहीं है, इस बहू को दीक्षित करा दो गुरु मंत्र देकर, और इसकी इच्छा नहीं,